आगे चलते हैं। 157, जन्नत का राही। इसकी उम्र 16 बरस हो चुकी थी। दीन की मोहब्बत इसके दिल में घर कर गई। वो हर वो कुरान की तिलावत और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता। जो ही नमाज का वक्त होता, वो सब छोड़कर नमाज की तैयारी में मसरूफ हो जाता। एक दिन वो अपने मामूल के मुताबिक कुरान करीम की तिलावत कर रहा था और फजर की इकामत का मुंतजर था। मौज़िन ने इकामत कही तो इसने कुरान करीम अलमारी में रखा, फिर सफ़ में खड़ा होने के लिए आगे बढ़ा। अचानक इस पर बेहोशी तारी हो गई और वो ज़मीन पर गिरा। कुछ लोगों ने इसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जिस डॉक्टर ने इस नौजवान को फर्स्ट एड फ्राहम की, इसने बताया कि जब इस नौजवान को लाया गया तो ये मुर्दा नाश की तरह था। जब मैंने इसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो पता चल गया कि इसे दिल का दौरा पड़ा है। यह हमला इस कदर शदीद था कि अगर ऊँट पर होता तो वो दूसरा सांस ना ले पाता। मैंने इस नौजवान की तरफ़ देखा तो ये मौत की दहलीज पर दस्तक दे रहा था और ज़िंदगी के सांसों का अलविदा कह रहा था। हमने इसे बचाने और इसके दिल को सुकून पहुंचाने की फौरी कोशिश की। जो डॉक्टर इसका मुआयना कर रहा था, इसके इलाज के लिए बाज़ आलात का इंतज़ार करने लगा। मैं तेज़ी से वो मतलूबा आलात ले आया। जब मैं वापस आया तो इस नौजवान ने डॉक्टर का हाथ थाम रखा था। डॉक्टर ने अपना कान नौजवान के मुंह से लगाया हुआ था। नौजवान आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहा था। मैं ये मंजर देखता रहा। अचानक नौजवान ने डॉक्टर का हाथ छोड़ दिया, दाई जानिब पहलू बदलने की कोशिश की और भराई हुई आवाज़ में कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। वो बार बार यही कलेमात दोहराने लगा। इसकी नब्स डूबने लगी और दिल की धड़कन थमने लगी। हम इसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तकदीर के आगे तदबीर का बस न चल सका। नौजवान ने ज़िंदगी को अलविदा कहा और इसकी रूह कफ़से अंसरी से परवाज़ कर गई, यानी उसके जिस्म को छोड़ गई। डॉक्टर रोने लगा, इस कदर रोया कि खड़ा होने के काबिल भी न रहा। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। हमने कहा, डॉक्टर साहब, आप क्यों रो रहे हैं? ये पहला मौका तो नहीं है कि आपके सामने किसी की वफ़ात हुई हो। लेकिन डॉक्टर मुसलसल रोए जा रहा था। जब इसके आंसू थमे तो हमने पूछा, ये नौजवान आपसे क्या कह रहा था? डॉक्टर बोला, इस नौजवान को थोड़ी देर के लिए होश आया। इसने आंखें खोलकर दाएं बाएं देखा, फिर समझ गया कि वो कहाँ है। इसने मुझे और हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट को देखा और मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, अपने साथी हार्ट स्पेशलिस्ट से कह दें कि ख्वाम खा जान न खपाए, मैं बचने वाला नहीं, मेरी मौत का वक्त आ चुका है। अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त जन्नत में अपनी जगह देख रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हमें भी खात्मा बिल खैर दे। कोई ना कोई खूबी होती है जो ऐसे वक्तों में काम आती है। दुनिया भी अच्छी अल्लाह कर दे और आखिरत भी अच्छी कर दे। आगे है, सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या मिला। पेज 160। अपनी कहानी अपनी ही जुबानी बयान करते हुए इसने बताया कि मेरा कोई दिन रोने से खाली ना जाता। न जाने मैं रोज़ाना कितनी मरतबा खुदकुशी का प्रोग्राम बनाती हूँ। ज़िंदगी मेरा साथ देने से इनकारी, मुझे हर घड़ी मौत की तलबगारी। काश मैं पैदा ही ना होती, ना इस दुनिया से आशना होती। मेरी कहानी का आगाज़ एक सहेली से हुआ। इसने एक दिन मुझे अपने घर बुलाया। वो इंटरनेट की सौदाई थी, यानी क्रेविंग थी उसको। इसने मुझे भी इंटरनेट से शनासाई की रग़बत दिलाई और इसके इस्तेमाल का तरीका सिखाना शुरू कर दिया। अब इससे बहुत ज़्यादा मिलने का मौका मैसर आ गया। तकरीबन 2 महीने गुजरे थे कि मैं इंटरनेट पर खुश कलामी की माहिर हो गई। मैंने ईमेल भेजना और शाइस्ता और गैर शाइस्ता हर तरह की वेबसाइट तलाश करना भी सीख लिया। इन 2 महीनों में मेरी अपने खाविन से इस बात पर लड़ाई रही कि वो घर में इंटरनेट लगवाए। वो इसके सख्त खिलाफ़ था। बिलाखिर मैंने ये कहकर कायल कर लिया कि मैं घर में अकेली बोरियत महसूस करती हूँ, मेरी सहेलियाँ इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं, क्यों ना मैं इसके ज़रिए से इनसे बातचीत कर लिया करूँ, जो टेलीफोन की बनिस्बत बहुत सस्ती पड़ती है। मेरे खावन ने मेरी बात मान ली। काश वो ऐसा ना करता। इसको हाईलाइट करें। बाज़ दफ़ा हम अपने जोश में कुछ ऐसी ख्वाहिशात रखते हैं जो पूरी ना हों तो बेहतर होती हैं। उनका पूरा होना हमारे बिगाड़ का ज़रिया बनता है। अब मेरा पूरा दिन अपनी इन सहेलियों के साथ चैटिंग में गुजरता। इसके बाद मेरे खामन को मेरी तरफ़ से कोई शिकवा या मुतालबा सुनने को ना मिला। जो ही वो घर से निकलता, मैं दीवानावार इंटरनेट की तरफ लपकती और कई कई घंटे बैठी रहती। अब मेरी ये ख्वाहिश रहती कि मेरा खामन घर से ज़्यादा देर बाहर ही रहे। मुझे अपने खामन से मोहब्बत थी, वो भी मेरी मोहब्बत का कदर शनास था। माली हालत कमज़ोर होने के बावजूद हर तरीके से मेरी दिल जोई करता था। जूं जूं दिन गुजरते गए, इंटरनेट पर मेरी तवज्जो बढ़ती गई। हालत ये हो गई कि इसके अलावा किसी काम में दिलचस्पी न रही। पहले हर 2 हफ्ते बाद मैं अपने खामन के साथ महके और ससुराल जाती थी, अब इससे भी कुतराने लगी। जब भी मेरा खामन अचानक घर में दाखिल होता, मैं फौरन नेट पर खुली हुई फाइलें बंद करना शुरू कर देती। इसे ये काम बड़ा अजीब लगा, शक तो ना किया मगर इसके दिल में ये देखने का इश्तियाक पैदा हो गया कि मैं इंटरनेट पर क्या करती हूँ। एक दिन इसे शायद जल्दी छुट्टी हो गई या वो मेरी टो लेने के लिए वक्त से पहले आ गया। घर में यूं दाखिल हुआ कि मैं संभल ना सकी। इसने मेरी चैटिंग देख ली जो मैं बंद ना कर पाई। वो डांटते हुए तंजिया लहजे में कहने लगा, इंटरनेट मालूमात का वसी मैदान है, इसे वक्त ज़ाया करने का वसीला नहीं बनाना चाहिए। वक्त गुजरता गया और मैं चैटिंग के फितने में और ज़्यादा गिरफ्तार होती चली गई। बच्चों की तरबियत का मामला खादिमा पर छोड़ दिया। खावन की वापसी का वक्त होता तो कंप्यूटर बंद कर देती। मैंने अपना ख्याल करना भी छोड़ दिया। पहले ये होता था कि मैं खावन की वापसी के वक्त बंद संवर कर आरास्ता बेरास्ता हो जाती थी, लेकिन इंटरनेट आने के बाद ये अमल मद्दम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं इंटरनेट की इस कदर दिलदादा हो गई कि खावन के सोने के बाद चुपके से कंप्यूटर वाले कमरे में चली जाती और जागने से पहले चुपके से आ जाती। इसे मालूम था कि मैं इंटरनेट पर जो कुछ करती हूँ वो महज वक्त का ज़िया है, लेकिन वो मेरी तन्हाई और घर वालों से दूरी के एहसास के ज़ेरे असर मुझसे मुशफिकाना रवैया रखता था। मगर मैं इससे गलत फ़ायदा उठाती रही। औलाद की तरबियत के हवाले से मेरी लापरवाही पर वो बहुत परेशान था। इसने कई दफ़ा तवज्जो दिलाई लेकिन मैं झूठ मूठ के आंसू टपकाने लगती और कहती, आप नहीं जानते आपकी अदम मौजूदगी में क्या उधम मचता है। मैं बच्चों की तरबियत के लिए फ़िक्रमंद रहती हूँ, वो मुझे तंग करके हिलकान कर देते हैं। मुख्तसर ये कि मैं खामन समेत हर चीज़ से लापरवाह हो गई। पहले वो घर से बाहर जाता तो मैं इससे राब्ते के लिए 10-10 मरतबा फ़ोन करती थी, लेकिन इंटरनेट आने के बाद घर के ज़रूरी काम के लिए कभी कभार ही फ़ोन करती। यूँ मेरा खामंद इंटरनेट पर बहुत खार खाने लगा, यानी उसको उससे चिढ़ हो गई। इसी तरह 6 माह गुजर गए। इस दौरान जाली नामों से मेरे कई राब्ते यानी लिंक्स बन गए। जो मुझसे चैटिंग करना चाहता मैं इसी के साथ चैटिंग करने लगती। मुझे मालूम भी हो जाता कि वो मर्द है, मगर मैं मर्दों से भी बेतकल्लुफ़ चैटिंग करती थी। एक मर्द से मैं बहुत मुतासिर हुई, इसकी बातें मेरे दिल को छूने लगीं। दिन पर दिन ये ताल्लुक़ बढ़ने लगा और तकरीबन 3 माह तक मुसलसल बढ़ता रहा। इसने अपने शहद भरे लहजे और मोहब्बत और इश्क की बातों से मुझे फांस लिया। बस औकात इसकी बातें मामूली होती थी, लेकिन शैतान इन्हें बहुत खूबसूरत करके दिखाता। अब तक हमारी बातचीत तहरीरी तौर पर होती रही। एक दिन इसने मेरी आवाज़ सुनने की तमन्ना की, मैंने इनकार कर दिया। वो अपनी बात पर अड़ा रहा, फिर मुझसे चैटिंग और ईमेल ख़त्म करने की धमकी देने लगा। मैंने इसका मुतालबा टालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों नाकाम रही। बिलाखिर इस शर्त पर सिर्फ़ एक दफ़ा बात करूंगी, मैंने इसका मुतालबा कबूल कर लिया। हमने चैटिंग का वॉइस सिस्टम इस्तेमाल करते हुए बातचीत की। अगरचे ये सिस्टम ज़्यादा बेहतर नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत और इसकी बातें बहुत दिलकश मालूम हुई। इसने कहा, इंटरनेट पर आपकी आवाज़ साफ नहीं सुनाई देती, बस अपना फ़ोन नंबर दे दें। मैंने इनकार कर दिया और इसकी जसारत पर हैरान भी हुई। फिर अरसा बीत गया, इससे बातचीत की नौबत ना आई। मैं खूब अच्छी तरह जानती थी कि शैतान मेरे पीछे पड़ गया है, जो इसकी आवाज़ को खूब से खूब तर बना कर पेश कर रहा है और मेरे दिल से बाकी मानदा इफ़्फ़त और असमत का एहसास ख़त्म करने के दर पे है। एक दिन मैंने इससे फ़ोन पर बात की, बस इसी वक्त से मेरी ज़िंदगी गिरावट और गंदगी का शिकार हो गई। बात तय हो गई। मेरी कहानी पढ़ने वाला समझता होगा कि मेरा खामंद मेरे बारे में लापरवाही का मुजाहरा करता था या घर से ज़्यादा गायब रहता था, लेकिन मामला इसके बरक्स है। वो सिर्फ अपने काम के लिए घर से बाहर जाता था। इसने तो मेरी और मेरी औलाद की खातिर अपने दोस्तों से भी किनारा कशी कर ली थी। इंटरनेट से दिल लगी के बाद जो रोज़ाना 8 से 12 घंटे होती थी, मुझे खावन का घर में ज़्यादा रहना अच्छा नहीं लगता था। मैं इसे अक्सर घर बैठे रहने पर कोसती और तरगीब देती कि शाम को भी कोई काम काज कर ले, ताकि बेपनाह कर्ज और लगातार किस्तों से जान छूट जाए। इसने वाकई मेरी बात पर अमल किया और एक छोटे कारखाने में अपने दोस्त के साथ शराकत कर ली। इसके बाद इंटरनेट पर गुजरने वाले वक्त में इजाफे पर इजाफा होता गया, बावजूद इसके कि वो हजारों रुपए के टेलीफोन बिल से परेशान था। मुझे इसका कोई एहसास ना रहा। इधर इस अजनबी शख्स से मेरा रابطہ और आगे बढ़ने लगा। कई मरतबा मेरी आवाज़ सुनने के बाद वो मुझसे मुलाकात की आरजू करने लगा। मैंने इसे डांट दिया। मैं इसे तो इसकी ख्वाहिश मुलाकात पर डांटती थी, मगर खुद इसे देखने का बड़ा शौक रखती थी। इसके बावजूद मुलाकात से गुरेजा थी, यानी अवॉइड कर रही थी। इसके बावजूद मुलाकात से गुरेजा थी, कोई और वजह ना थी, बस एक अनजाना सा खौफ था। दूसरी तरफ इसका इसरार रोज बरोज बढ़ता गया। वो सिर्फ मेरे दीदार का शौकीन था। आखिरकार मैंने इसका ये मुतालबा भी मान लिया, इस शर्त पर कि वो हमारी पहली और आखिरी मुलाकात होगी। बाहम मुआहदे के बाद हम दोनों एक बाजार में मिले। हम दोनों अकेले थे, शैतान के अलावा दूर तक कोई मुतनफ़िस न था। मैं पहली ही नज़र में इसकी गर्विदा जमाल हो गई। शैतान ने इसे मेरी नज़रों में बहुत हसीन और जमील बना दिया। मेरा खावन भी हुस्न में कम ना था, लेकिन शैतान की आदत है कि हराम को खूब बना संवार कर पेश करता है। मुलाकात ख़त्म हो गई। इसके बाद वो मेरे साथ ताल्लुकात बढ़ाने लगा। वो इस बात से बेखबर था कि मैं शादीशुदा हूँ और कई बच्चों की माँ हूँ। कई बार इसने मुझे देखा, खूब चिकनी चुपड़ी बातें की, मेरे बारे में हर बात मालूम की। फिर वो मुझे खावन से बदजन करने लगा। फिर एक दिन इसने मुझे अपने खावन से तलाक लेकर अपने साथ शादी का अरमान पेश कर दिया। मैं अपने खामन से नफरत करने लगी, नित नए मसाइल और झगड़े पैदा करने शुरू कर दिए, ताकि वो मुझे खुद से ही तलाक दे दे। मेरा खामन परेशान कुन मसाइल का सामना न कर सका, अक्सर घर से गायब रहने लगा। फिर बहुत हौलनाक वाकया पेश आया। हुआ यूँ, एक दिन मेरे खावन ने बताया कि वो किसी काम के सिलसिले में 5 दिन के सफ़र पर जा रहा है। इसने मुझे बच्चों समेत मैके जाने का मशवरा दिया। मैंने मौका गनीमत जाना, मैके जाने से इनकार कर दिया। वो लाचार होकर जुमे के दिन सफ़र पर रवाना हो गया। इधर इतवार को हमारा मुलाकात का वादा था। मैं शैतान की उंगली थाम कर चुपचाप एक बाजार में इसके सामने जा पहुंची। फिर इसके साथ गाड़ी में सवार हुई और वो गाड़ी को सड़कों पर दौड़ाने लगा। जिंदगी में ये पहला मौका था कि मैं एक अजनबी के साथ घर से निकली थी। मैं सख्त परेशान थी। मैंने इससे कहा, मैं घर से ज़्यादा देर गायब नहीं रहना चाहती, डरती हूँ कहीं खावन घर ना पहुँच जाए या कोई और नाखुशगवार वाक्या ना पेश आ जाए। वो कहने लगा, जब तेरे खावन को इस बात का इल्म होगा, वो तुझे खुद ही तलाक दे देगा। इस तरह तुझे इससे खुलासी मिल जाएगी। अब मुझे इसकी बातें और लहजा अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मैंने फिर इससे कहा, ज़रा ज़्यादा दूर ना जाओ, मैं घर से लेट नहीं होना चाहती। लेकिन वो मुझे इधर उधर की बातों में उलझाने लगा। अचानक हम अंधेरे में डूबी हुई एक नामालूम जगह पर पहुंचे। ये कोई रेस्ट हाउस मालूम होता था। मैं चीखने लगी, ये कौन सी जगह है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? गाड़ी रुकी, दूसरे आदमी ने दरवाज़ा खोला। इसने मुझे बहुत बुरी तरह घसीट कर बाहर निकाला और कुछ दूर जाकर एक कमरे में धकेल दिया। वहाँ पहले ही 2 आदमी बैठे हुए थे। एक तरफ से अजीबोगरीब खुशबुएं उठ रही थी, हर चीज़ मुझ पर बिजली बनकर गिर रही थी। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, इससे रहम की अपील की, मगर मेरी फरियाद आवारा कहकहों में गुम हो गई। अजनबी मुकाम पर मैं खौफ की शिद्दत से इर्द गिर्द के हालात समझने से कासिर थी। अचानक मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ा, फिर एक गरजदार धमकी सुनाई दी। इसने मुझे हिला कर रख दिया। इसके बाद डर के मारे मैं होशो हवास ही खो बैठी। फिर जो होना था हुआ। जब मुझे होश हुआ तो मुझ पर शदीद रोब तारी था, जिस्म कांप रहा था, आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, कार में डाला और मेरे घर के करीब एक जगह फेंक गए। मैं जल्दी से अपने घर में घुस गई, रो रो कर अपने आंसू खुश कर लिए और अपने आप को कमरे में कैद करके बैठ गई। अपने बच्चों को देखा न अपने मुंह में कोई लुकमा डाला। अब मुझे खुद अपने वजूद से नफरत हो गई। खुदकुशी की कोशिश की, कामयाब ना हो सकी। औलाद के बारे में कोई होश न रहा। मेरा खावन सफ़र से लौट आया। मेरी हालत इस कदर ख़राब थी कि अपने कदमों पर चल भी न सकती थी। वो मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने मुझे सुकून आवर और ताकत की दवाइयाँ दीं। मैंने अपने खावन से कहा, मुझे फ़ौरन मेके पहुँचा दे। मैं बहुत रो रही थी। घर वाले कुछ ना कर सकते थे। इनका ख्याल था कि मेरी अपने खावन से कोई लड़ाई हुई। मेरे वालिद ने मेरे खावन से मुफाहमत यानी सुलह कराना चाही। वो किसी नतीजे पर ना पहुँच सके। मेरे खावन को ना किसी और को कुछ मालूम था कि मुझ पर क़यामत की बिजलियाँ गिर चुकी हैं। मेरे घर वाले मुझे कई आमिलों के पास भी ले गए। मैं चुप थी, कैसे बताती और क्या बताती कि मुझ पर क्या बीत गई। किस्सा मुख्तसर, मैं अपने खाविन के काबिल न रही, इससे तलाक मांग ली क्योंकि मैं शरीफ लोगों के साथ रहने का जवाज़ खो बैठी थी। मैंने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। चैटिंग के ज़रिए बनने वाले दोस्त चैटिंग करने वाली लड़कियों के शिकारी होते हैं। ये सफाक लोग लड़कियों को अंधेरी कोठरियों में घसीटते हैं, एक रात की मलका बनाते हैं और फिर इन्हें जिंदा दरगोर होने के लिए वीराने में फेंक जाते हैं। मेरी हालत देखकर मेरा शौहर बहुत दुखी हुआ। वो मेरे पास ही बैठा रहा, कई रोज़ काम पर ना गया। इसने तलाक देने से इनकार कर दिया। बेचारा मुझसे बहुत मोहब्बत रखता था, अपना आशियाना बनाने के लिए मेहनत करते करते थक गया था। वो तलाक देकर घर उजाड़ना नहीं चाहता था। मैंने अपना राज अपने सीने में छुपा लिया। आए दिन मेरा गम और गुस्सा बढ़ता गया, मेरी रूह लहूलुहान हो गई। ये सोच सोच कर मेरे सांसों में गिरा पड़ गई कि मैं किन बदमाशों के नरगे में फंस गई थी, मुझे कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ा, मैं कैसे कैसे शराबियों और जानियों की हवस का खिलौना बनी रही, मैं कितनी पगली थी। उफ, मैंने कितना वक्त इन बदकुमाशों और लफंगों से चैटिंग में बर्बाद कर दिया जिन्हें कोई शरीफ आदमी देखना भी गवारा नहीं करता। बिल्कुल सच है, बुरी बातों का अंजाम हमेशा बुरा होता है और खून के आंसू रुलाता है। अब मैं अपनी कहानी इस हालत ज़ार में लिख रही हूँ कि बिस्तरे मरस पर पड़ी सिसक रही हूँ। आह, नफ्स और शैतान के शिकंजे में आ जाने वाली एक हकीर और बेमाया हस्ती अब मौत के कदमों की आहट सुन रही है। शायद ये बिस्तरे मरग ही साबित हो। देख लीजिए, ये आज घर घर की कहानी है। बिलीव मी, बहुत सारे शरीफ घरानों का सुकून और इत्मीनान सिर्फ इस किस्म की चीज़ों से टूटा हुआ है। पहले लोग अनमैरिड यंग कवारे बच्चे बच्चियों की बातें करते थे और अब शादीशुदा घर टूट रहे हैं, और 80% वजह यही है जो इधर लिखी हुई है। अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करने की बजाय और अपने इन सारी चीज़ों को गलत इस्तेमाल करने की बजाय अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो उसका तरीका क्या है? आखिरी कहानी हमारी इस बुक की, कुरान की मोहब्बत, पेज 172। ये वाकया बयान करने वाली आमतुल्ला कहती हैं, वो कहती हैं कि मैं हरम मक्की में थी और मुझे औरतों को हज की तालीम और तरबियत देने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मैं औरतों के खैमे में थी, अचानक एक औरत ने मेरे कंधे पर थपकी दी। वो आजमी औरत थी यानी अरब नहीं थी। अटक अटक कर गुफ्तगू कर रही थी। वो कह रही थी, ए हाजिया ए हाजिया। मैंने मुड़कर इसकी तरफ देखा। वो औसत उम्र की खातून थी और मेरे गालिब गुमान के मुताबिक इसका ताल्लुक तुर्की से था। इसने मुझे सलाम कहा, वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन इसकी ज़ुबान इसका साथ नहीं दे रही थी। इसने मेरे हाथ में पकड़े हुए मुसहफ़ की तरफ इशारा किया, फिर टूटी फूटी अरबी में पूछा, क्या तुम कुरान पढ़ी हुई हो? मैंने जवाब दिया, हाँ जी हाँ। इसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। इसकी यह हालत देखकर मुझसे रहा न गया। मैं भी रोने लगी और इससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? इसने बैठी हुई आवाज़ से कहा, मैं कुरान नहीं पढ़ सकती। मैंने पूछा, वो क्यों? इसने जवाब दिया, मैं ये मुकद्दस किताब पढ़ना नहीं जानती। अभी इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि वो फिर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने इसे दिलासा दिया, इसकी उम्मीद बढ़ाई। मैंने कहा, तुम अभी अल्लाह के घर में हो, इसके सामने गिड़गिड़ा कर दुआ करो कि वो तुम्हें कुरान सिखला दे और कुरान पढ़ने में तुम्हारी मदद फरमाए। मेरी बात सुनकर इसके आंसू थम गए। मैं ये वाकया सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। इस औरत ने दस्ते दुआ बुलंद किया और कहने लगी, अल्लाह मेरा सीना खोल दे, अल्लाह मेरा हाफ़ज़ा तेज़ कर दे ताकि मैं कुरान पढ़ सकूँ, अल्लाह मेरा सीना फराख कर दे ताकि मैं कुरान पढ़ सकूँ। फिर इसने मेरी तरफ़ देखा और बड़ी परेशानी के आलम में बोली, क्या मैं कुरान पढ़े बगैर फौत हो जाऊंगी? मैंने इसे तसल्ली दी, नहीं इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, तुम अन करीब कुरान पढ़ने लगोगी और कई मरतबा इसे मुकम्मल पढ़ डालोगी, शुरू नहीं करोगी बल्कि पूरा भी करोगी। मैंने इससे पूछा, क्या तुम सूरत फातिहा पढ़ सकती हो? इसका चेहरा खुशी से खिल उठा। इसने कहा, जी हाँ। फिर वो ठहर ठहर कर पढ़ने लगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर रहमानिर रहीम, तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं जो जहानों का परवरदिगार है, नहायत मेहरबान बेहद रहम करने वाला। इसने सूरत फातिहा मुकम्मल पढ़ ली, फिर बैठ गई और छोटी छोटी कई सूरतें पढ़ी, वो इसे ज़ुबानी याद थी। मैं इसका उम्दा अरबी लहजा सुनकर बड़ी हैरान हुई, वो यकायक नहायत उम्दा अरबी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन अफसोस कि इसने इस प्यारी ज़ुबान को कुरान सीखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। अचानक इसके चेहरे का रंग बदल गया, वो कहने लगी, अगर मैं बग़ैर कुरान पढ़े मर गई तो जहन्नुम में चली जाऊंगी, अल्लाह की कसम मैं कुरान करीम का कैसेट खरीद लूंगी, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम सबसे अजीम है। वो अल्लाह की इज्जत व अजमत और इसकी बड़ाई बयान करने लगी, अल्लाह की किताब का हम पर हक जतलाने लगी। मैं इसकी बातें सुनकर अपने ऊपर काबू ना रख सकी, बहुत रोई कि एक अजमी औरत अल्लाह और उसके अजाब से इस कदर डर रही है, हालांकि इसने अभी कुरान भी नहीं पढ़ा। इसकी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश ही यही थी कि वो कुरान पढ़ ले। वो रो रही थी और बड़ी अफसरदा थी, इसे सांस लेना दोभर हो रहा था इसलिए कि वो अल्लाह की किताब नहीं पढ़ सकती थी। क्या हमने भी कभी इसकी परवाह की? हमने तो इसे बसे पुश डाल दिया, यानी बिहाइंड द बैक्स। हमें अल्लाह ने इस लाजवाल मोजज़े से नवाजा है लेकिन हम इसे भूल चुके हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं। हालांकि अल्लाह ने हमारे लिए कुरान करीम हिफ्ज़ करने, इसकी तिलावत करने और इसे समझने के तमाम मौके फराहम फरमाए हैं, इसके बावजूद हम इससे रूगर्दानी किए हुए हैं। आखिर हमारे दिलों को किस चीज़ से ज़िंदगी मिलेगी? आह, आंखें नम ही नहीं होती, भला कुरान करीम के बाद कौन सी चीज़ है जो इन्हें नमनाक करेगी? आखिर हमारे तफक्कुरात में कौन इनकलाब बरपा करेगा? तो ये है सारी कहानियों का समप। जब कुरान की मोहब्बत आती है ना, तो ज़िंदगी ज़ाया नहीं होती, फालतू बेकार वक्त ज़ाया करके इंसान अपने आप को पीछे करता है, और नुकसान क्या होता है कि फिर हम अपने भी नहीं रहते। मुझे लगता है कि आप में से हर सिस्टर अगर अपनी दोस्तों, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, उनके साथ इस सेशंस को शेयर करके अपने साथ उनको जोड़े, तो ये एक फर्स्ट स्टेप होगा उनको कुरान की तरफ लाने का। इस किताब को बेस बनाकर अपनी दोस्तों से बात करें, कोई एहतमाम कर लें। देखिए, ये कैसे हो सकता है कि तुफैल दोसे की बात सारा कबीला मान ले और हमारी एक भी ना माने? ये औकात है हमारी, हमारी दोस्तियां ऐसी हैं कि हमारी दोस्त हमारी एक बात भी ना माने, हमारे रिश्तेदार, हमारे प्यारे। आप आज जाकर लिस्ट बनाएं कि इस पूरे शहर में कितने लोगों को आप जानती हैं, दर्दमंदी के साथ दुआ मांग के अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इनके दिल खोल दे, अपने अंदर आजजी लाएं, नरमी लाएं। जैसे अभी कहा गया कि तू नरमी बरत इनके साथ, नबी की दुआ थी अल्लाह महदी दौसन, लेकिन तुफैल दौसी को क्या कहा कि जाके बात करो और नरमी की बात करो। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत सारी उम्मीद है आप कोशिश करके सुरखरू हो जाएं, यानी उनको चिखाएं, और आप देखेंगे कि एक दफ़ा दिल को लग जाए तो फिर अल्लाह ताला बुला ही लेता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह का ज़रिया बना दे, जो कमी बेशी हुई दरगुजर फरमाए, और हमें इससे मज़ीद से मज़ीद सबक लेने वाला बना दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।